नमो भगवत ओम नमः भागवत के प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय से कथा जारी रखेंगे। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। आज सुबह श्लोक संख्या 27 की चर्चा हुई थी, आज 28 से शुरू करते हैं। मन्ये त्वां कालं ईशानं अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यत्मिथः। मन्ये त्वां कालमीशानम्। अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम्। अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम्। अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलिः। श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूं। आप सबों पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। वैसे हर शनिवार को शाम को अंग्रेजी में क्लास होता है, लेकिन आज विशेष करके ये क्लास हिंदी में होगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी यहां पर श्री कृष्ण को काल कह के संबोधित कर रही हैं। मन्ये त्वां कालम ईशानम्। मैं आपको काल समझती हूं, समय। आप मूर्तिमान काल हैं। कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बचपन से जाना है और जिनको उन्होंने अपना परिवार का सदस्य समझा है, अपने भाई वसुदेव का पुत्र जिसको माना है और जो अपने लड़कों का बहुत ही निकट का मित्र है, ये कोई एक साधारण परिवार का सदस्य नहीं है, ये तो स्वयं परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देखकर कुंती महारानी इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि ये श्री कृष्ण ये भगवान हैं जो कि हर व्यक्ति हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और यही परमात्मा इस भौतिक जगत में काल के रूप में काम करता है। परमात्मा और काल में कोई अंतर नहीं है। काल या समय वो शक्ति है जो कि हर चीज का गठन करती है, हर चीज का नाश करती है, लेकिन काल स्वयं घटता नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम एवाक्षयः कालः, मैं अवश्य माम एव अक्षयः कालः, मैं काल हूं, लेकिन ये काल का गुण क्या है? अक्षय, इसका क्षय नहीं होता। काल अन्यों का क्षय करता है, हर चीज का क्षय करता है, लेकिन स्वयं काल का क्षय नहीं होता। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत, कि मैं ही काल हूं और सारे लोगों का क्षय करने के लिए मैं आया हूं। तो काल सबका क्षय करता है, लेकिन स्वयं काल का क्षय नहीं होता है। काल है कलयताम अहम, अन्य जगह गीता में भगवान बताते हैं कि दमन करने वाले शक्तियों में से प्रधान काल है। अन्य शक्तियों का सामना भला कोई करे या न करे, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने युक्ति से, परंतु काल का सामना कोई नहीं कर सकता। काल को पराजित नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा जी भी काल से परास्त हो जाते हैं और यही काल साक्षी है हमारा। परमात्मा के रूप में स्थित भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी हैं, वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। इन सारे बातों को भगवान परमात्मा के रूप में अच्छी तरह से भली भांति जान लेते हैं। और ये कहना कोई लाभ की बात नहीं है कि मैंने पूर्व किए हुए कर्मों को किसने देखा है। आप लोग कहते हैं कि इस जीवन के जो भी दुख हैं हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के फल हैं, लेकिन मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है कि हमने ऐसे कोई कर्म किए थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे आप याद रखें या न रखें, आपको ज्ञात हो या न हो, लेकिन परमात्मा आपके हृदय में विराजे हैं और उनको सब कुछ मालूम है। तो आप उनकी स्मृति शक्ति परिपूर्ण है, कभी चूकती नहीं है, इसलिए वो हमारे कार्यों का जो फल है वो प्रदान करते हैं। हमारा प्रारब्ध जो है, हमारा किस्मत, हमारा भाग्य वही बनाते हैं, परमात्मा या काल। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, ईशानम, ईश मतलब जो नियंत्रण करता है, नियंता, परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर। तो क्योंकि भगवान स्वयं काल है और काल हमारे कार्यों का फल हमको देता है, इसलिए वही भगवान या काल परम नियंता है, जिसके अधीन सब कुछ है और ये भगवान किसी के अधीन नहीं है। इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ने हर एक प्राणी को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हमें काल शक्ति जो है दुख प्रदान करती है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो काल के द्वारा दंडित होता है, लेकिन अज्ञानवश लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारे स्वतंत्रता का किसी भी तरह से उपयोग क्यों न किया जाए, ये हमारी निजी बात है, इसमें कोई भगवान का संबंध नहीं है। परंतु अवश्य दुरुपयोग करने से दंड मिलकर ही रहेगा। दूसरी ओर जो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं उनको पुरस्कार मिलता है। जो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, स्वतंत्रता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भगवान के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे संतान हैं। जैसे किसी एक परिवार में जो माता पिता की बात मानते हैं वो अच्छे बच्चे माने जाते हैं, अच्छे संतान हैं। तो उसी प्रकार से जो बद्ध जीव, जो मनुष्य भगवान के आदेशानुसार चलते हैं वो अच्छे संतान भगवान के माने जाते हैं। लेकिन ऐसा जो नहीं करते उनको काल द्वारा बहुत भीषण दंड मिलता है। तो दोनों सुख और दुख जो इस दुनिया में आते हैं जीवों के ऊपर, वो काल द्वारा प्रदत्त होते हैं। काल भेदभाव नहीं करता, काल देखता है ऐसे कर्म किए हैं उपयुक्त कोई फल मिलेगा। इस प्रकार से सब कुछ काल के नियंत्रण में चल रहा है, काल के भीतर चल रहा है, काल के बाहर कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में। इसलिए काल और भगवान अभिन्न है। हालांकि काल के भीतर सब कुछ चल रहा है, फिर भी काल की जो समझ है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्राणियों को भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक कीटाणु है, एक मनुष्य है और स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। इन तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तीनों के दृष्टि से जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की गणना अलग अलग होती है। एक कीटाणु का जीवन कितना होता है? 2 घंटे में उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य 50, 60, 70, 80 साल में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी का करोड़ों साल लग जाते हैं। परंतु चाहे वो ब्रह्मा जी हो, मनुष्य हो या कीटाणु हो, सब काल के वश में, सभी ये भूत, वर्तमान, भविष्य के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे भूत, वर्तमान और भविष्य सबके लिए क्यों आता है? क्योंकि हर एक प्राणी इस भौतिक जगत में अपना शरीर बदलता है, ये कारण है। हमारा जन्म होता है, फिर बचपन से शरीर बढ़ते रहता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर शरीर का नाश हो जाता है। शरीर के नाश होने के बाद एक नया शरीर मिलता है और पुराने शरीर का भूत, वर्तमान, भविष्य खत्म हो जाता है। अब नया भूत, वर्तमान, भविष्य आरंभ हो जाता है और इस दूसरे शरीर के नाश के बाद पुनः एक और भूत, वर्तमान, भविष्य आरंभ हो जाएगा। तो क्योंकि हम यहां पर भौतिक जगत में शरीर बदलते रहते हैं, इसलिए हर बार एक नया भूत, वर्तमान, भविष्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से काल हर चीज का परिवर्तन कराता है इस भौतिक जगत में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को नहीं बदलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्थावस्थाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि अजह अपि, हालांकि मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं प्रकट होता हूं, मेरा शरीर अव्यय आत्मा है और मैं अपने अंतरंगा शक्ति आत्ममाया से संभवामी, मैं बार बार यहां पे प्रकट होता हूं इस भौतिक जगत में। तो भगवान का शरीर पूरी तरह से सच्चिदानंद या आध्यात्मिक होने की वजह से उनका शरीर बदलता नहीं है और इसलिए भगवान के लिए कोई भूत वर्तमान भविष्य का भेद नहीं है। भगवान काल के इस विभाजन से परे हैं क्योंकि भगवान ही काल हैं, भगवान की शक्ति है ये काल, इसलिए काल का विभाजन ये भगवान को, भगवान के ऊपर नहीं किया जा सकता काल का आरोप। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं चौथे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। हे अर्जुन, कई साल पहले मैंने यही गीता का उपदेश जो कि मैं अब तुम्हें दे रहा हूं मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार से राजर्षियों की परंपरा में ये गीता का ज्ञान चलते आया। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण वर्णन कर रहे थे तो अर्जुन के मन में एक संशय आया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदो प्रोक्तवान इति। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है अपर है मतलब निम्न श्रेणी का है, परम जन्म विवस्वतः और सूर्यदेव विवस्वान का जन्म परम है अर्थात वो आपसे उम्र में बहुत वरिष्ठ हैं, उनका जन्म परम है आपका जन्म अपरम है, आयु की दृष्टि से विवस्वान तो आपसे बहुत बड़े हैं। हे कृष्ण, तुम और हम उम्र के हैं, हमारा जन्म तो प्राय एक ही साथ हुआ था लेकिन विवस्वान के को जन्म होकर लाखों साल हो गए। कथम एतत् विजानीयाम तुम आदो प्रोक्तवान इति, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि तुमने विवस्वान को लाखों साल पहले यह ज्ञान दिया था जबकि हम दोनों का उम्र एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हम दोनों में फर्क केवल इतना है कि मुझे इन सारे पूर्व जन्मों का स्मरण है, ज्ञान है और तुमको नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि वो काल के परे हैं, उनको कभी विस्मृति नहीं होती और काल के द्वारा वो सारे बद्ध जीवों को विस्मृति में डालते हैं। तो ये है भगवान और जीवों के बीच में अंतर। इसलिए कुंती महारानी यहां भगवान श्री कृष्ण को केवल काल और ईश कह के संबोधित नहीं करती हैं, आगे कहती हैं अनादि निधनम। अनादि निधनम मतलब जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई निधन नहीं है, जिनका कोई शुरुआत नहीं और जिनका कोई अंत भी नहीं। आदि और अंत, निधन मतलब अंत। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक है, सनातन है। अनादि निधनम ये भगवान का एक नाम है, अनादि निधनम। एक भक्त भी है इस्कॉन में जिनका नाम है अनादि निधनम दास, उनके दास जो कि अनादि निधनम है। और फिर आगे बताते हैं विभुम, इसलिए आप विभु हैं, सबसे महान आप ही हैं। क्योंकि आप स्वयं काल हैं। और फिर आगे वो बताते हैं समम चरंतम सर्वत्र। चरंतम मतलब विचरण करने वाले, आप तो सब जगह हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। कई ऐसे लोग होते हैं तो सोचते हैं कि भगवान को केवल हृदय के अंदर पाया जाता है, लेकिन उससे उन्नत जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान न केवल हृदय के अंदर हैं, लेकिन वो बाहर भी हैं। तो वो भक्त श्रेष्ठ है जो भगवान के उपस्थिति को अंदर और बाहर दोनों जगह देख सकता है। समम चरंतम सर्वत्र, सब जगह भगवान उपस्थित हैं। और इस वाक्य का और एक अर्थ ये भी है कि भगवान अपनी करुणा, अपनी कृपा सब जगह बरसाते हैं, सबके ऊपर बरसाते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जिस प्रकार से सूरज कभी भेदभाव नहीं करता है, ये गरीब है इसके लिए मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा, ये अमीर है इसको बहुत रोशनी दूंगा, ऐसे सूरज भेदभाव नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में जाकर दरवाजे खिड़की बंद कर ले और सूरज की रोशनी को देखना नहीं चाहे तो फिर कौन क्या कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है, परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय के खिड़कियों को बंद करके रखे और भगवान की कृपा स्वीकार नहीं करे भक्तों के माध्यम से तो फिर क्या किया जा सकता है। परंतु इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान तो अपनी कृपा को सब जगह देते हैं, सबको देते हैं। और जो यहां सुख दुख हमें मिलता है उसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं भूतानाम यन मिथह कलिही। कली मतलब झगड़ा। तो भूतानाम जो मनुष्यों में, जो प्राणियों में झगड़े होते हैं वो किसके लिए होते हैं? यन मिथह, परस्पर उनके आदान प्रदान की वजह से होते हैं। इसमें भगवान को कोई दोष नहीं देना चाहिए। जितनी भी समस्याएं हैं वो सब परस्पर हमारे बीच में झगड़े मतभेद इत्यादि की वजह से है। और ये युग ही कलयुग है तो ये इसका अनुभव तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से है। कैसे लोगों के बीच में रहते हुए मतभेद हो जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए और अन्यों को भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य समाज में रहते हुए जब अन्यों के माध्यम से हमें कुछ दुख पहुंचता है तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति एक निमित्त मात्र है हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का फल हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोषी वो नहीं है, दोषी तो मैं हूं, क्योंकि मेरे हुए किए हुए कर्म ही उनका फल मुझे मिल रहा है। कभी कभी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, अब इतने सारे भक्त आते हैं, रविवार के दिन तो सारा मंदिर भर जाता है, उत्सव के दिन तो और भी ज्यादा भक्त आते हैं, कभी कभी हजार डेढ़ हजार दो हजार भक्त भी आ जाते हैं। और जब भक्त भक्ति में आगे बढ़ना शुरू करता है तो हो सकता है कि कभी कभी भक्तों के बीच कोई मतभेद हो जाता है या किसी के व्यवहार से किसी एक भक्त को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो स्वाभाविक है, बाहर भी समाज में होता है, यहां भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। परंतु अगर वो भक्त सोचे कि अरे इस भक्त ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मुझे मंदिर में नहीं आना है, तो कुंती महारानी कहती हैं ये तो स्वाभाविक होना ही है, इसे तुम कृष्ण को क्यों दोष दे रहे हो, उनकी सेवा क्यों छोड़ रहे हो, भक्ति को क्यों त्याग रहे हो, उस भक्त को क्यों दोषी ठहरा रहे हो, मंदिर को क्यों दोषी ठहरा रहे हो। इसलिए इसकी परवाह नहीं करना। भूतानाम यन मितः कलिही, ये तो होना ही है भौतिक जगत में और विशेष करके कलयुग में। तो ये जो परस्पर मतभेद होते हैं इत्यादि, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्यादा ध्यान हमारे भक्ति के ऊपर हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का परम ध्येय बड़े आसानी से प्राप्त हो जाए। अन्यथा माया शक्ति जो है हमारे सामने बहुत सारे पथ भ्रष्ट होने के कारण प्रस्तुत कर सकती है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी माया जो है वो अन्य भक्तों के माध्यम से भी कार्य कर सकती है, हमारे श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए, हमारे दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए। तो सच्चा भक्त वो होता है जो कभी भी भगवान की सेवा को त्यागता नहीं है। इस प्रकार से कुंती महारानी ने अब यहां अब भगवान श्री कृष्ण का संबोधन किया है। अगला बोर्ड है, अब इसके बाद उन श्लोक है, ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है। ये बताने वाली है कि कृष्ण की लीला, कृष्ण के कार्य, बल्कि कृष्ण ही सारे जगत को विडंबना में डालने वाले हैं, मोहित करने वाले हैं। कृष्ण को, कृष्ण की लीला को समझना बहुत कठिन है। अब इन तीन श्लोकों में 29, 30 और 31 कुंती महारानी इस बात को कहने वाली हैं। न वेद कश्चित् भगवान् शिक्षितम्, तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हचित्, द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवन् शिक्षितम्, तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हचित्, द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। नहीं, अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं जो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अत्यंत भ्रामक हैं। न तो आपका कोई कृपा पात्र है, न ही कोई आपका द्वेष भाजन या अप्रिय है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो कुंती महारानी यहां पर बतला रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भ्रामक हैं, लोगों को भ्रम में डालने वाली हैं। क्यों? क्योंकि एक साधारण मनुष्य की तरह ही भगवान कभी कभी कार्य करते हैं। इसलिए जो अज्ञान में हैं, वो सोचते हैं कि ये भी तो हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति हैं, और इस प्रकार भगवान की लीलाओं को वो गलत समझ बैठते हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सदैव दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं। केवल साधारण मनुष्य समाज में आकर वो एक लीला करते हैं। ये एक प्रकार का ड्रामा है, एक नाटक है। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, हालांकि ऐसे कभी कभी दिखाई पड़ता है। पिछले श्लोक में के चर्चा में हम कह रहे थे कि भगवान सूर्य के समान है। जैसे सूर्य पक्षपात नहीं करता, सबको अपनी रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपनी कृपा सभी को प्रदान करते हैं। सूर्य की रोशनी से कभी कभी एक पत्थर भी बहुत मूल्यवान बन जाता है, बहुत सुंदर बन जाता है, और कभी कभी एक अंधा आदमी सूरज के किरणों में होते हुए भी कुछ देख नहीं सकता। तो इसमें सूरज का दोष नहीं है, एक पत्थर ने भी सूरज की किरणों का लाभ उठाया और चमकने लगा है, मूल्यवान हो गया, और बेचारा अंधा आदमी इसका उपयोग नहीं ले पाया। तो सूरज की रोशनी का लाभ उठाने में पात्रता या अपात्रता का प्रश्न उठता है, सूरज के पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा को पात्र करने को प्राप्त करने के लिए पात्र या अपात्र व्यक्ति की बात है, भगवान का कोई इसमें पक्षपात नहीं होता है। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो कि भौतिक इच्छा से भगवान के पास आते हैं और सोचते हैं कि भगवान को ऐसे कुछ मीठे शब्द बोले जाएं, भगवान की प्रशंसा की जाए तो कुछ हमें मिलेगा। जैसे यह संसार में होता है ना, कोई बड़े आदमी के प्रशंसा कर लो तो कुछ मिल जाएगा, एक नौकरी मिल जाएगा, या समझ लीजिए कि जो नेता होते हैं चुनाव के समय आके बहुत प्रजा को बहुत कुछ करते हैं, प्रशंसा करते हैं ताकि कुछ उनको मिल जाए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो इस प्रकार से भगवान की प्रशंसा करते हैं इस हेतु कि उन्हें कुछ प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन सच्चे भक्त ऐसा नहीं करते। इन दो प्रकार के भक्तों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों का समाज व्यापारियों का समाज नहीं है। लोग कृष्ण भक्ति कृष्ण मंदिर में आते हैं कृष्ण का भजन करने के लिए, कृष्ण के साथ व्यवसाय करने के लिए नहीं आते हैं कि हम आपकी इतनी पूजा करेंगे, आपको इतना भेंट चढ़ाएंगे, इसके बदले में आप हमें इतना दे देना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो पीड़ित हैं, जो किसी धन या भौतिक चीज के अभिलाषा रखते हैं, जो ज्ञानी हैं और जो जिज्ञासु हैं। लेकिन प्राय ऐसे देखा जाता है कि जब लोग ऐसी भावना से भगवान की ओर अग्रसर होते हैं तो वो क्षणिक होता है। जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है भगवान के कृपा के द्वारा, तो भगवान से अपना संबंध तोड़ देते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका मतलब होता है तो भगवान के पास आते हैं, अचानक भगवान को याद करते हैं, और जब उनको अपना जब अपना काम समाप्त हो जाता है तो फिर नहीं आते। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे नहीं होते हैं और हर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात तात्पर्य में कहते हैं कि जो ऐसे मिश्र भक्त होते हैं, जो किसी भौतिक चीज की कामना की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं, उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है लेकिन अपूर्ण रूप से, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो किसी को अपूर्ण कृपा, किसी को पूर्ण कृपा, किसी को कम सूरज की रोशनी, किसी को ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है। दोषी कौन है? वो भक्त का हृदय। अगर हमारे हृदय में कोई भौतिक कामना न हो तो पूर्ण कृपा प्राप्त होगी भगवान की। और पूर्ण कृपा क्या है भगवान की? कि वो हमें उनके चरणों के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अंततः उन्हीं के धाम में निवास प्रदान करते हैं, उनका शाश्वत सानिध्य प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर भला और क्या हमें कृपा मिल सकती है? लेकिन इतना होने पर भी ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी संशय रखते हैं कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण पक्षपात करते हैं। अरे आप क्यों ऐसा कहते हैं? देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर ऐसे लोग पूछते हैं कि देखो ये बताइए, भगवान सबके पिता है ना? तो हाँ, साधुओं के पिता हैं और दुष्टों के जो असुरों के पिता भी हैं। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों है कि वो साधुओं को बचाते हैं, दुष्टों को मारते हैं? क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? अगर दुष्ट भी उनके बच्चे हैं तो उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उनको भी बचाना चाहिए। केवल साधुओं को क्यों बचाना चाहिए? इसका मतलब है कि भगवान भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, कि मुझे केवल साधुओं को बचाना है और दुष्टों को मुझे नहीं बचाना है, जब सभी भक्त हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। तो इसके जवाब में वैष्णव आचार्यों ने सुंदर उत्तर दिया है। इसका कोई उत्तर दे सकते हैं आप? हाँ जी बताइए। जाता है चोर को जेल में, सरकार क्या उस व्यक्ति का शत्रु है? उसके भलाई के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सबके समान, सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, प्रेम की दृष्टि रखते हैं। जिस प्रकार से माता पिता जो पालक होते हैं दुष्ट बच्चे को भी प्रेम करते हैं, हालांकि दुखी होते हैं लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे भी भगवान प्रेम करते हैं। भगवान द्वेष नहीं करते किसी से, परंतु उनका प्रेम का प्रदर्शन अलग ढंग से होता है। जैसे कभी कभी पालक अपने बच्चे को थप्पड़ मारते, कोई द्वेष भावना से नहीं, प्रेम से, वो प्रेम का थप्पड़ होता है बच्चे के सुधारने के लिए, ताकि बच्चे गलत रास्ते पर न जाए, बच्चा अच्छी तरह से समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं तो ये भी भगवान के प्रेम का प्रदर्शन है, उनके हित के लिए है। और बढ़ के आश्चर्य की बात यह है कि जब भगवान दुष्टों का नाश करते हैं तो उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला देते हैं। तो जब भगवान दुष्टों का नाश करते हैं तो उनको ऐसे गति प्रदान करते हैं जो कि लाखों साल योगियों को, ज्ञानियों को तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। तो देखिए ये प्रेम है कि नहीं, ये कृपा है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी दुष्ट होना चाहिए ताकि भगवान हमें मारे और हमें मुक्ति मिल जाए। दुष्ट होना बहुत कष्टदायक है दूसरों के लिए और हमारे लिए भी। भगवान के पूर्ण कृपा को प्राप्त करने का आसान तरीका है उनका भक्त बनना। लेकिन फिर भी अगर कोई दुष्ट हो भी तो उनको ऐसी गति प्राप्त होती है। इसके लिए कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ, जब कंस, रावण इत्यादि ऐसे दुष्टों का विनाश जब श्री कृष्ण ने किया तो उनको मुक्त करा दिया। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कितने सारे लाखों लाखों सैनिक थे, थोड़े पांडवों के पक्ष में ऐसे लड़ रहे थे और थोड़े और कई कौरवों के पक्ष में थे। लेकिन चाहे वो कौरवों के या पांडवों के पक्ष में क्यों ना हो, जितने भी सैनिक वहां पर मर गए उन सबको मुक्ति मिल गई। क्यों मुक्ति मिल गई? क्योंकि भगवान की उपस्थिति में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। भगवान के का दृष्टि और भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हुई जबकि वो प्राण त्याग रहे थे। तो भगवान के सानिध्य में जो अपना प्राण त्यागता है उसे यहां भौतिक जगत में लौट के नहीं आना पड़ता है, वो भगवान के धाम चले जाता है। हालांकि उसे भगवान के वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं मिलता, कि वो तो केवल भक्त के लिए है। लेकिन जो अभक्त होते हैं, जो असुर होते हैं, जब उनका विनाश भगवान के हाथों होता है या भगवान की उपस्थिति में होता है भगवान के भक्तों के माध्यम से, जैसे अर्जुन आदि, तो उनको निराकार में लीन होने का एक मौका मिलता है, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने का मौका मिलता है। और कभी कभी जब भगवान और भी कृपा दिखाना चाहते हैं तो उस समय ऐसे असुरों को या राक्षसों को न केवल निराकार की प्राप्ति लेकिन अपने वैकुंठ लोकों की, अपने निजी धाम की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे कि पूतना, पूतना का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में उद्धव विदुर जी से कहते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यद् अप्यसाधवी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कृपालु भला कौन हो सकता है इस जगत में, क्योंकि उन्होंने पूतना जैसे राक्षसी को भी अपने धात्री का स्थान दिया अपने गोलोक वृंदावन धाम में, जबकि पूतना ने अपने स्तन पर कालकूट नाम का एक भयंकर विष लगाया था और कृष्ण को विषपान करके मार डालना चाहती थी। असाध्वी मतलब श्रद्धा से नहीं आई, वो साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, एक दुष्ट विचार से भगवान के पास आई। लेकिन भगवान ने अच्छाई देखा पूतना का। अच्छाई क्या था उसमें? पूतना तो मारने के लिए आई थी ना कृष्ण को, तो ये बुराई है, लेकिन अच्छाई इसमें क्या है? एक मां का स्वरूप लेकर आई थी कृष्ण के पास, कृष्ण को दूध पिलाना चाहती थी, तो कृष्ण ने ये अच्छाई देखा। जो बुराई थी उसको तो खत्म कर दिया, क्योंकि पूतना का स्तनपान करते हुए इतना दर्द हुआ पूतना को कि उसको प्राण त्यागना पड़ा। तो फिर जो बुराई थी, जो पाप की वृत्ति थी, वो खत्म हो गई। थोड़े क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने सारे कलमशों से पूतना को मुक्त कर दिया। और जब सारे कलमश खत्म हो गए तो रहा क्या? ममता की भावना, जो मां की भावना है वो रह गई बस, कि मैं कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हूं। बुराई का नाश कर दिया भगवान ने पूतना का वध करके, लेकिन अच्छाई चीज, अच्छी चीज जो है वो रह गई, और इसलिए वही गति को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हालांकि वो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन द्वेष भावना से वो ऐसा नहीं करते, वो प्रेम से करते हैं। और इसका सबूत ये है कि ऐसे दुष्टों को वो भौतिक जगत से मुक्त कर देते हैं। और फिर आई बात साधुओं की, परित्राणाय साधु नाम। तो ये साधु कौन होते हैं? क्या केवल जो व्यक्ति बहुत नीति का पालन करता है, जिसकी जटाएं हैं, लंबी दाढ़ी है, जो गहरे वस्त्र पहनता है, क्या यही वस्तु व्यक्ति साधु है? नहीं, साधु वो व्यक्ति है जो कि दिव्य स्तर पर स्थित होता है भगवान की भक्ति के द्वारा, भौतिक गुणों से वो बंधा हुआ नहीं होता है। साधारण व्यक्ति बद्ध होते हैं तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन सच्चे साधु वो होते हैं जो तीन गुणों के परे होते हैं, और ऐसे होते हुए वो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, बिना कोई मिलावट की भक्ति करते हैं। दो प्रकार की भक्ति है, मिश्र और शुद्ध। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य पुरुष या स्त्री के ऊपर लगाव रखते हैं तो इसको व्यभिचारिणी भाव तो है, परंतु मुझे ये भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, तो इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्मभूत अवस्था, आत्मा की अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था, स गुणान समतीत येतान, इन गुणों को वो पार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अव्यभिचारिणी भाव से भक्ति योगे न सेवते, मेरी सेवा करता है। माम च यह अव्यभिचारिण, बड़े श्रद्धा से बड़े सेवा भाव से मेरी भक्ति करता है, ये साधु है जो कि दिव्य स्तर पर प्राप्त होता है। अगर ये सच्चा साधु है जो कि परम भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो फिर उसका उद्धार भला कैसे हो सकता है? जिसका उद्धार पहले से हो गया है, उसका उद्धार करने के लिए आने का कोई मतलब नहीं भगवान का। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना, मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। लेकिन बात तो यह है कि साधुओं का उद्धार तो हो चुका है, भगवान का नाम लेकर भगवान की सेवा करके वो तो शुद्ध हो चुके हैं, तो भगवान क्यों आते हैं ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए जिनका उद्धार पहले से हो चुका है? ये एक विरोधाभास है ना, विडंबना है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं निणाम विडंबनम, ये बड़े विडंबना की बात है। आप ऐसा लगता है कि आप पक्षपात करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, कभी साधुओं का उद्धार करने आते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। और जहां साधुओं की बात होती है उनका तो उद्धार हो चुका है, आप कहते हैं उद्धार करने आता हूं, तो फिर कृष्ण भगवान क्यों आते हैं? साधुओं का उद्धार करने नहीं आते, वो आते हैं साधुओं के हृदय में जो अंतरंग उनकी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए। ऐसे साधुओं की इच्छा क्या है? कि वो भगवान को आमने सामने देखना चाहते हैं, भगवान के सानिध्य में प्रत्यक्ष रूप से साक्षात रहना चाहते हैं, भगवान के लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, मैं साधुओं के अलावा किसी को नहीं जानता, साधु मेरे हृदय में है और साधुओं के अलावा मेरे हृदय में कुछ नहीं है, और साधुओं के हृदय में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। ये परस्पर हमारा संबंध है। मत अन्यत्ते न जानन्ति माम तेभ्यः न मनागपि, तो मेरे सिवाय मेरे भक्त कुछ नहीं जानते और भक्तों के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। तो ये भक्त ऐसे सच्चे साधु और भगवान के बीच में संबंध है, ये प्रेम का आदान प्रदान है जो केवल अव्यभिचारिणी भक्तों के साथ होता है। व्यभिचारिणी भक्तों के साथ ऐसा प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता। तो ऐसे साधुओं के हृदय की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव तथैव भजाम्यहम्, जो जैसी भावना अपने हृदय में रखता है उस भावना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसके साथ बर्ताव करते हैं। कोई भगवान का शत्रु बनना चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं वो भूमिका निभाऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम मेरी लीला में शामिल होना चाहते हो, ठीक है तुम्हारे लिए मैं प्रकट होता हूं, आओ मेरी लीला में शामिल हो जाओ। इस प्रकार से ये पक्षपात नहीं है, बल्कि भगवान हरेक व्यक्ति, चाहे वो साधु हो चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो बीच में हो, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हरेक व्यक्ति को भगवान का भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो नास्तिक होते हैं वो भी मृत्यु के समय भगवान का दर्शन करते हैं, जबकि भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। नास्तिकों को भी भगवान का दर्शन करना पड़ता है अंत में, लेकिन वो रूप बड़ा भयानक होता है, उसको मृत्यु कहते हैं। काल, काल रूप, काल से सब कुछ का नाश हो जाता है। मृत्यु सर्वहरश्च अहम्, मृत्यु के रूप में आकर मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो इस प्रकार से इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो अब समय समाप्त हो चुका है, लेकिन इस श्लोक की कथा अभी तक समाप्त हुई नहीं, तो कल इस कथा को आगे जारी रखेंगे, इस श्लोक को समाप्त करेंगे और अगले आने वाले श्लोकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो